Namo Buddhaya, Jai Bhim. So we know, of course, that Dr. Babasaheb Ambedkar stressed education, agitation, organization.
तो हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो ऐसा कहा है.
He saw those three as the way to change India.
और उन्होंने यह तीन चीजें देखी भारत को बदलने के लिए.
His slogan was educate, agitate, organize.
उनका जो नारा था वह था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो.
And well, this place was where really systematic education in the world began.
और यह वो जगह है जहाँ पे व्यवस्थित या बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा की नींव रखी गई.
This was founded in the 5th century.
यह पांचवी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई.
And it formed the model for university education all over the world.
और पूरे दुनिया में विश्वविद्यालय का जो शिक्षा होनी चाहिए उसका एक उदाहरण स्वरूप इस विश्वविद्यालय ने रखा.
It was founded many centuries before any other similar institution.
किसी भी विश्वविद्यालय जो आज हम देखते हैं उसके हजारों साल पहले इसकी नींव रखी गई.
The next university to be founded that we know of was in Italy, in Bologna.
और after this, you mean?
Yes, after this.
इसके बाद मेलोनिया
बोलोनिया
इटली में दूसरी जो यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना हुई.
In the country where, from which Savantara comes.
जहां से सामंतरा जी आती है उस देश से.
So that was many centuries later.
वो बहुत ही शतकों बाद हुआ.
So this was a very very early place of learning which has had a huge influence on the whole world.
तो उससे भी कई पुरातत्व यह जगह है जिससे पूरे दुनिया में शिक्षा की नींव रखी गई.
And the way in which education still takes place amongst Tibetans, for instance, is completely founded on what happens here.
और अभी भी आज भी जो शिक्षा है तिब्बतन या और संप्रदाय में दी जाती है उसकी बुनियाद यहीं से ली गई है.
So at Drepung Monastery, which is now in South India, used to be in Lhasa, they follow the same curriculum, they have the same format, the same general idea.
तो Drepung Monastery जो है जो पहले लासा में भी थी अभी दक्षिण भारत में भी है उन सब का जो अभ्यासक्रम है या पद्धति है यह इसी यूनिवर्सिटी के या विश्वविद्यालय के आधार पर रखी गई है.
The tradition started here, went throughout Asia.
तो यह जो परंपरा है यह समूचे एशिया में उस तरीके से फिर विस्तारित हुई.
And the way in which things happen in Japanese monasteries, in Chinese monasteries, all influenced by what happened here.
तो जो कुछ भी प्रभाव हुआ जापान के ऊपर या अन्य विश्वविद्यालय के ऊपर वह इसी से ही इसका प्रभाव देखा जा सकता है.
So you can see the greatness of your ancestors.
तो आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों की महानता क्या है.
Well, my ancestors were just running around with bearskins on. Your ancestors were studying in these sort of universities.
तो जब मेरे पूर्वज केवल ऐसे ही घूम रहे थे तब आपके पूर्वज ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे.
My ancestors were still just working with stone and things like that. Yours were at a university. Yeah.
तो मेरे पूर्वज जो थे वो पत्थरों के साथ तब काम कर रहे हो लेकिन आपके पूर्वज ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे.
So, well, this is what Baba Saheb wanted to bring back to India.
तो यही बाबा साहब भारत में पुनर्स्थापित या पुनर्जीवित करना चाहते थे.
This is why it's so important that all of you get really good education.
इसलिए आप सब लोगों को यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अच्छी शिक्षाएं लें.
We need to try to recreate the glories of Nalanda.
और हमें सबको यह जो समृद्धि जो है नालंदा की उसे वापस लाना बेहद जरूरी है.
And don't forget it was only the first of quite a number of major universities in India.
और भारत के सभी मुख्य विश्वविद्यालयों के तुलना में यह सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था.
All over northern India there were similar institutions which were founded on the basis of this one.
और समूचे भारत में विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई जो नींव इस विश्वविद्यालय की थी.
So it was founded, we don't know exactly when, but sometime in the 5th century.
अबे हमें बिल्कुल उचित तारीख नहीं पता है लेकिन पांचवी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई.
It was founded by Gupta kings.
गुप्ता जो राजा थे या उनकी जो उनका राजकाल था उस शासन में इसकी स्थापना हुई.
That was a major empire in northern India, mainly northern India, that of course succeeded. Well, sometime after the Mauryas.
मौर्यों के बाद जब गुप्तों का शासनकाल आया उस काल में ही लगभग इसकी नींव रखी गई.
They weren't exactly Buddhist, but they were patrons of Buddhism.
वे बौद्ध नहीं थे लेकिन बौद्धों के वो हितचिंतक थे या उनको संरक्षण देते थे.
And they founded this institution and a number of others, but this one primarily.
और भी कई संस्थानों का उन्होंने नींव रखी लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण थी.
And they started it as a place initially for the training of bhikshus.
और जो भिक्षु थे भिक्षुगणों के लिए उन्होंने यह प्रशिक्षण संस्था निकाली थी.
But the idea of what that education means went way beyond just learning about Dhamma.
और वो जो कल्पना थी वो केवल धम्म ही पढ़ने की नहीं थी उससे कई परे वह कल्पना थी.
It went on to include all arts and sciences of that time.
उस वक्त का जो विज्ञान और मानव विज्ञान था उन सब का सामाजिक शास्त्र जो था उस सब की नींव इस विश्वविद्यालय में रखी गई.
Mathematics would have been studied, science would have been studied, astronomy.
तो जो गणित है साइंस है और एस्ट्रोनॉमी है उन सब की यहाँ पढ़ाई हुई.
And it's said that after the collapse of Nalanda, Indian science went right down.
और जब इस विश्वविद्यालय का पतन हुआ तो भारतीय विज्ञान का भी उस वक्त पतन हुआ.
They'd study literature.
उन्होंने साहित्य पढ़ा.
They'd study grammar, logic.
व्याकरण पढ़ा उन्होंने लॉजिक पढ़ा.
And they'd study all the major schools of Buddhist philosophy.
और जो प्रमुख बौद्ध दर्शन थे उन सभी मुख्य दर्शनों का यहाँ ज्यादातर पढ़ाई हुई.
They'd study Vaibhashika and Sautrantika Savastivada.
वैशेषिक स्वतंत्रवाद और स्थावर
Sautrantika.
Swatantrika. इन सब का यहाँ पे पढ़ाई हुई.
Savastivada was the major school of philosophy apart from Theravada.
तो थेरवाद थेरवाद से जो अवस्थीवाद था यह भिन्न एक संप्रदाय था तब बौद्धों का.
For those of you who know philosophy, it was a realist philosophy.
जो भी यानी realist का मतलब
तत्ववादी.
हाँ तत्ववादी जो फिलोसफी है या दर्शन है उस दर्शन के बारे में जो जानते उन सबको यह पता होगा.
They'd study Madhyamaka.
माध्यमिका उन्होंने यहाँ पे पढ़ा.
Which of course whom the great pundit was Nagarjun.
उसके जो महान पंडित थे वे स्वयं नागार्जुन थे.
And Nagarjun is again teaching at Nalanda.
तो नागार्जुन फिर से यहाँ नालंदा में बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं.
And they'd studied Chittamatra or Yogacara.
और चित्तमात्र और योगाचार की जो पढ़ाई है वो यहाँ पे हुई.
So all the major schools of Buddhist philosophy would be studied.
तो प्रमुख सभी जो बौद्ध दर्शन थे उनकी पढ़ाई इस नालंदा में हुई.
All side by side here.
और सभी यहाँ एक साथ वो पढ़ते थे.
And but at the same time they'd also study what we now call Hindu philosophy.
और उन्होंने जो आज हम जिसे हिंदू दर्शन कहते हैं उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ाई की.
They'd study other kinds of thinking.
और भी जो विचार है उन विचारों की भी पढ़ाई उन्होंने यहाँ की.
You could say why.
अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों.
Well, if you want to persuade people, you need to know their arguments.
अगर आपको लोगों को बताना है तो आपको उनके विज्ञान या दर्शन के बारे में जानना जरूरी है.
And it's said of some great pundits at Nalanda University, they knew Hindu philosophy better than the Hindu philosophers.
तो the Hindu philosophers here were new.
No, the Buddhist pundits knew Hindu philosophy better than the Hindu pundits.
तो जो बौद्ध हिंदू विद्वान थे वह किसी हिंदू पंडित से अधिक अच्छे तरीके से और गहराई से हिंदू दर्शन को जानते थे.
So the whole range of learning available at that time was studied here.
तो जो कुछ भी ज्ञान का जो भंडार था वो सब यहाँ पे मौजूद था.
It was, of course, a monastery.
निश्चित रूप से यह एक monastery थी.
Vihara? It was for monks. Sangarama. Yeah, Sangarama.
यह एक संगाराम था.
For monks, I don't know. I've never heard of nuns.
तो मैं भिक्षुओं के बारे में अभी तक पढ़ा हूँ. भिक्षुनियों के बारे में अभी तक कोई हमें ज्ञात नहीं
है. We have to do it differently now.
अब हमें अलग तरीके से वह करना होगा.
But so that all the people here would have been dedicated to a Buddhist life.
तो जो कुछ भी लोग यहाँ रहे थे वह बौद्ध जीवन के लिए कटिबद्ध थे.
And they'd be learning the whole range of Buddhist philosophy, Hindu philosophy, other philosophy.
तो और भी जो दर्शन के जो यानी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं का अध्ययन बौद्ध हो या हिंदू हो
Jainism and the other Shramaniya traditions. Ajivika.
Ajivika.
Yeah, yeah.
और जो भी श्रमणिक जो परंपराएं थी उन सभी श्रमणिक परंपराओं का यहाँ अध्ययन होता था.
And they'd study grammar, logic, all of the basics of knowledge.
तो जो ज्ञान की जो बुनियाद है वह सभी बुनियादी पढ़ाई यहाँ पे हुई.
They'd also study meditation.
उन्होंने ध्यान भी सीखा.
They'd study tantric ceremony and theory.
और जो तंत्रिक सिद्धांत और जो परंपराएं थे वह भी वो सीखे.
So they immensely learned place.
तो यहाँ पे बहुत ही ऐसा इन्हें सखोल ज्ञान का भंडार था.
One of the most interesting things about it is that the encouragement that it gave to discussion.
और सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि जो चर्चा के लिए संगोष्ठी के लिए यहाँ जो प्रोत्साहन मिलता था वह सबसे महत्वपूर्ण था.
The idea of debate was central to a Buddhist education.
वाद विवाद का जो कल्पना है वह बुनियादी कल्पना बौद्ध अध्ययन पद्धति में थी.
You still see that in Tibetans, amongst Tibetans, engaging in debate.
Huh? अभी भी हम तिब्बत में जो भिक्षु है उनमें यह परंपराएं हम देखते हैं.
One sits down on the ground and the other one stands up and attacks him.
तो एक भिक्षु बैठता है और दूसरे भिक्षु की तरफ अगर कोई उसका क्या कहते हैं विधान अगर देना हो तो वो ऐसा देते हैं.
So the one on the ground has to put forward a thesis.
तो जो जमीन पे जो बैठा होता है उसे एक अपना विचार देना होता है.
And the one standing up attacks.
और जो ऊपर बैठा है वो उसके ऊपर अटैक या आघात करता है.
So you see that gesture in Tibetan tradition. Huh?
तो इस तरीके से जब हम कोई बात को अगर अपनी कहते हैं तो इस तरीके का यानी मुद्रा हम तिब्बती परंपराओं में देखते हैं.
It's firing an arrow at you.
मान लो जैसा कोई बाण चला रहा हो आपके विधान का.
You have to defend yourself against that attack.
और आपको उस बाण के प्रति आपका स्वयं का संरक्षण करना है.
So it makes a very agile mind, a very a clever mind.
तो इससे आपका जो दिमाग है या मस्तिष्क है वह काफी तीक्ष्ण होता है.
And that tradition still goes on in Tibet. It still goes on in China.
अभी भी चाइना या तिब्बत में यह परंपराएं चल रही है.
And they had a tradition that you couldn't, anybody was entitled to lodging at Nalanda. Any monk was entitled to lodging at Nalanda so long as he fulfilled a condition.
Or
any monk who came to Nalanda could stay here so long as he fulfilled one condition.
तो कोई भी भिक्षु यहाँ नालंदा में रहने के लिए पात्र था जब तक वह एक शर्त है उसको पूरा ना करे.
He had to pass an exam.
उसको एंट्रेंस एग्जाम जिसे कहते हैं.
Yes, entrance exam. Yeah, exactly.
तो प्रवेश परीक्षा जो है वो प्रवेश परीक्षा उसे देनी पड़ती थी.
And where did the entrance exam take place?
और कहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता था?
At the entrance.
At the entrance, यानी प्रवेश द्वार में ही प्रवेश परीक्षा होती थी.
You couldn't come through the gate unless you answered questions that the gatekeeper would put to you.
तो जब तक आप उस द्वारपाल को दिए गए सवाल का जवाब नहीं देंगे आप उस प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं कर सकते.
He wouldn't say how many angas are there in the eightfold path.
अब वो यह सवाल नहीं पूछेगा कि कितने अंग है आर्य अष्टांगिक मार्ग में.
How many truths are there in the four noble truths?
चार आर्य सत्य में कितने सत्य है बताओ, यह सवाल नहीं होते थे.
There'd be much more difficult questions than
that. वो बहुत कठिन और कड़े सवाल होते थे.
They'd ask questions, I imagine, like what is the true nature of existence?
वो आपको पूछते थे कि अस्तित्व का सत्य दर्शन क्या है.
Well, would you be able to come in? We are all outside. So that was the tradition that you had to face debate right from the start.
तो इस वाद विवाद को आपको जैसे ही आपकी शुरुआत होती है तब से वह शुरुआत करनी पड़ती थी.
And when you were in debate all the time.
और जब आप अंदर आते हो तो वो चर्चाएं जो विवाद था, वाद विवाद जो था वह हमेशा ही चलता था.
You still get that tradition in Zen and Chan Buddhism, the tradition of Dharma combat.
अभी भी जैन और या चान जो परंपरा है उसमें धर्म
combat, Dharma battle.
हाँ, तो जो धर्म युद्ध है यानी चर्चाओं का वो अभी भी वह परंपराएं है.
You have to face a question if you come to a monastery.
अगर आप किसी संगाराम में जाते हैं तो आपको सवाल का सामना करना पड़ता है.
So you see, Buddhism right at this stage was about intellectual inquiry.
तो बौद्ध धर्म के शुरुआत से ही एक बौद्धिक जो विश्लेषण है या उसकी जो खोज है वह उसकी बुनियाद रही है.
It was about discussion, debate.
और यह चर्चाओं का परंपरा रही है, वाद विवाद की परंपरा रही है.
And of course, after Nalanda was destroyed, that tradition was lost.
और जब नालंदा का पतन हुआ तो उस परंपरा का भी पतन हुआ.
So this is what we have to bring back, this sort of debate, discussion.
तो इस तरीके के जो चर्चा है उन चर्चाओं को हमें वापस लाना है.
This learning, but with an active intelligence.
तो यह पढ़ाई है लेकिन आपकी सक्रिय बुद्धिमत्ता के साथ है.
So there's said to be at the height of the monastery's existence 10,000 monks living
here. तो जब यह सबसे अपने ऊंचाई पे उच्चांक पे जब यह विश्वविद्यालय था तब यहाँ 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु थे.
They'd live in separate colleges.
अलग अलग विद्यालयों में वो रहे.
So I think that's what these different buildings represent.
तो यह जो अलग अलग आप जो इमारतें देख रहे हैं वह अलग अलग कॉलेजेस है.
This is my first visit here, so I don't know the layout of the place, but I think that's what these represent.
तो यह मेरी पहली भेंट है इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन इसी के लिए ये बनाए गए हैं.
So you'd get several hundred monks living together in a single block.
तो हजारों जो लोग थे वह एक विद्यालय में रहते थे.
Some of these would be three or four stories high.
तीन चार मजलिया ये इमारतें होगी.
And they'd all live together. They'd have a common kitchen and they'd practice together and study together.
तो साथ में वह भोजन करते थे, रहते थे और चर्चाएं करते थे.
And then they'd come together for big pujas, big debates and so on.
और बड़ी चर्चाओं के लिए या वंदना के लिए वो इकट्ठा आते थे.
We know a lot about the life of Nalanda because of what happens in Tibetan monasteries today.
तो जो कुछ भी तिब्बतन संगारामों में या मोनेस्ट्रीज में आज हो रहा है उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ नालंदा में कैसा जीवन रहा होगा.
Because Tibet took the late Indian Buddhism and put it in the deep freeze.
तो तिब्बत ने क्या किया? जो उत्तरार्ध का जो बौद्ध धर्म था, उसको उन्होंने उठाया और हिमालय में जाके उसे फ्रीज में, sorry, ऊपर उत्तर में जाके उन्होंने फ्रीज किया. Sorry, I use हिमालय. I'm sorry.
I have to debate with him. Yeah. And what we see there is largely Pala dynasty Buddhism.
और मुख्यतः वो जो शासन काल था वह पाल शासनकर्ताओं का काल था.
With some central Asian shamanism mixed in. Yeah.
और जो केंद्रीय एशिया के जो लोग थे वह पाल डायनेस्टी के लोग थे.
But the way in which the monasteries were organized, the curriculum of studies, all started at Nalanda.
तो जो कुछ भी अभ्यासक्रम या जो शिक्षाएं वो आज ले रहे हैं वो सभी का उगम नालंदा से हुआ
and similar universities in North India.
और वैसे ही जो समान विश्वविद्यालय थे उत्तर भारत में
apparently there were eight compounds, eight different colleges.
यहाँ आठ भिन्न भिन्न विद्यालय थे
each of which would have its own hierarchic, its head, its servants and so forth.
उनके अपने जो अध्यापक या मुख्य अध्यापक वो होते थे
and then there would be a grand abbot who was in charge of the whole monastery.
और एक मुख्य उनके कुलपति रहते थे जो उनके सबके प्रमुख रहते थे
and there was a huge library.
और बहुत ही विशाल ऐसा यहाँ वाचनालय था लाइब्रेरी थी
which is it, you know? Is it here still? Is it this? Apparently it was there were three big buildings, one of which was nine stories high.
और एक मुख्य जो वाचनालय था या लाइब्रेरी थी वो नौ मंजिली इमारत थी.
And there were hundreds of thousands of books in it.
और हजारों किताबें वहाँ थी.
And those books, of course, were all written by hand.
और वो सारी किताबें हाथ से लिखी गई थी.
No printing.
तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी.
So you see sometimes you see it down the Mahabodhi temple you can see Tibetans with leaves shaped like that in a pile.
तो आप कभी कभी महाबोधि में जाते हो तो उनकी किताबें आपने देखी हुई लंबे लंबे पन्ने होते हैं और उसमें कुछ लिखा होता है
with a block of wood on either side.
और दोनों तरफ लकड़ी की पट्टी से उसे बांधा हुआ होता है.
So there've been hundreds of thousands of those there.
तो ऐसे हजारों लाखों किताबें यहाँ पे थी.
Huge volumes of Buddhist scriptures.
बहुत ही महान बौद्ध ग्रंथ यहाँ पे थे.
Many many volumes on Hindu philosophy.
बहुत सारे ग्रंथ वहाँ हिंदू दर्शन के ऊपर थे.
Much literature.
बहुत सारा साहित्य था.
Logic, science, and so on.
इन सभी विषयों के ऊपर.
It said that the story is that that Nalanda was sacked, was burnt by what's his name? Khalji, Bhaktiar Khalji. Yeah.
मोटे मोटे तौर पे ऐसा मानते हैं कि बख्तियार खिलजी जो शासन करता थे उन्होंने इसके ऊपर आघात किया था.
And when he came here, it said that he burnt the monastery, the library.
और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने यहाँ पे अपनी भेंट दी तो उन्होंने लाइब्रेरी को जलाया.
And it said that the library burned for 3 months.
और ऐसा कहते कि 3 महीनों तक वह जो वाचनालय जो था वह जलता रहा.
And that for several months after that, even years after that, smoke still rose from the ruins.
और महीनों तक जो धुआं था वह धुआं उससे निकलता रहा.
What a destruction, what a terrible destruction.
कितनी भयानक यह यानी नष्टता है.
But that shows you the size of the library and the huge effort that had gone into it.
लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विशाल वह लाइब्रेरी होगी और कितना साहित्य वहाँ रहा होगा.
Of course, it was founded sometime in the 5th century and destroyed sometime in the 12th.
तो 5वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी गई और 12वीं शताब्दी में यह इसका पतन हुआ.
So almost 800 years this monastery, this vihara existed.
तो यह विश्वविद्यालय 800 साल तक सक्रिय रहा.
Just think of the hundreds of thousands of crores of monks who must have passed through here.
और आप सोचिए कि कितने करोड़ों लोग यानी भिक्षु यहाँ से शिक्षित और प्रशिक्षित होकर निकले होंगे.
Just think of them all here, just over the centuries. 10,000 here every year.
तो आप सोचिए कि 10,000 से भी ज्यादा भिक्षु लोग यहाँ हर साल शिक्षित होते थे.
They came from all over India.
समूचे भारत से वो आते थे.
They came from Sri Lanka.
श्रीलंका से आते थे.
They came from what is now Pakistan, from Afghanistan.
अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो भौगोलिक एरिया है वहाँ से वो आते थे.
Those were major Buddhist areas at that time.
उस वक्त यह प्रमुख बौद्ध स्थल थे.
Kashmir was a major center of Buddhist meditation.
कश्मीर जो था यह प्रमुख बौद्ध ध्यान का केंद्र था.
Bangladesh.
बांग्लादेश था.
Tibet.
तिबेट था.
Nepal.
नेपाल.
all the neighboring countries.
और सभी जो नजदीकी जो राष्ट्र है वह सभी बौद्ध केंद्र स्थान थे.
Many came from China and Mongolia.
बहुत सारे जो प्रवासी है वह चाइना और मंगोलिया से आए.
From up into Russian Mongolia in Buryat country, yeah.
Buryat जो देश है मंगोलियन रशिया के से लगा हुआ वहाँ से भी लोग यहाँ आए.
Even I'm told from Turkey.
मुझे यह भी ज्ञात है कि तुर्की से भी तुर्किस्तान से भी लोग यहाँ आए.
And from the Southeast Asian countries, from Burma, Bangladesh, Thailand, Malaysia. Indonesia was a major center of Buddhism.
तो पूर्व दक्षिणी जो देश है थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर वियतनाम वगैरह वहां से भी यहां लोग आए.
And Indonesia.
और इंडोनेशिया.
Very important. Sumatra and Java were major centers of Buddhism.
तो सुमात्रा और जावा यह प्रमुख बौद्ध केंद्र स्थान थे वहां से जहां यहां लोग आए.
And they're strongly influenced by Nalanda.
और वे सभी लोग नालंदा से काफी प्रभावित थे.
You know, now everybody wants to go to Harvard or Yale.
हर जो विद्यार्थी आज हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है.
They used to want to go to Oxford or Cambridge in England.
या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में आज हम जाना चाहते हैं.
But yes, it's Harvard and Yale and Princeton now that are the tops.
तो अभी हार्वर्ड येल या प्रिंसटन यह सब विश्वविद्यालय वो टॉप में है.
In those days, everybody wanted to come to Nalanda.
लेकिन उस वक्त हर आदमी या हर व्यक्ति नालंदा में आना चाहता था.
And just as in British universities and American universities, you can see so many people from India, from China. Then you would have seen people from all over Asia.
तो जैसे कि आप अमेरिकन और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में सभी दुनिया से लोग वहाँ देखते हैं, सभी दुनिया के लोग तब नालंदा में थे.
And I'm sure there would have been monks from the European countries too.
और मुझे लगता है कि यूरोपियन जो देश है वहां से भी कुछ भिक्षु यहाँ आए होंगे.
Because Greek kingdoms continued in northwestern India, in what is now Afghanistan and Pakistan, until quite late.
उत्तर पश्चिमी देश जो थे वहाँ पे भी कुछ सक्रिय लोग थे जो आज हम भारत से देखते हैं.
So just imagine a great melting pot.
तो आप समझ सकते हैं कि सभी का मिलन स्थान यहाँ पे नालंदा में था.
No caste, definitely no caste.
वहाँ पे जाति नहीं थी.
But not even nation.
और देश भी नहीं, राष्ट्रवाद भी नहीं था.
Everybody would come together just to study the Dhamma.
और सभी लोग यहाँ आते थे धम्म का अभ्यास करने के लिए.
From here they go back to their own countries.
यहाँ से वो अपने देशों में वापस जाते थे.
They take all the learning that they'd gathered here.
जो कुछ भी शिक्षाएं उन्हें मिली यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा की.
The most famous of the students from outside India was Xuanzang.
और सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध कोई विद्यार्थी यहाँ से रहा होगा तो वे थे पूज्य ह्वेनसांग.
He's a very important figure in Chinese Buddhism.
Chinese बौद्ध परंपरा में यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है.
And he came here in the 7th century.
सातवीं शताब्दी में वो यहाँ आए.
And we know a lot about Nalanda from his descriptions of it.
और उन्हीं के विश्लेषणों से हमें नालंदा के बारे में काफी ज्ञान या ज्ञात होता है.
One of the most striking things he says is how beautiful it was.
सबसे महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं कि कितनी आकर्षक और सुंदर यह परिसर था.
We just see these bricks, huh?
अब हम केवल ये अवशेष पत्थरों के देखते हैं या ईंटों के देखते हैं.
But you imagine huge buildings with a great wall all the way around.
तो आप सुंदर इमारतें बहुत ही सुंदर शिल्पकलाओं के साथ आप समझ सकते हैं.
Maybe with golden roofs, huh?
और हो सकता है कि सोने के उनके छत हो.
Everything beautifully kept, beautifully maintained.
हर चीज को सुंदरता से और बहुत अच्छी तरीके से रखा गया होगा.
Many lakes, many ponds, many streams.
बहुत सारे यहाँ झरने होंगे, झील होंगे.
And the whole site was huge.
और सभी जो यहाँ का जो परिसर था वह विशाल था.
We just got a fraction of it exposed here.
यहाँ का केवल छोटा सा हिस्सा ही आपको दिख रहा है.
There's maybe a tenth of it that's been uncovered.
तो इससे 10 गुना से भी ज्यादा विशाल यह विश्वविद्यालय था.
But everybody comments on its beauty.
लेकिन हर व्यक्ति उसके सुंदरता के ऊपर विधानकर्ता इतिहास में
and beautiful gardens, many trees, many flowering trees and so on.
बहुत सुंदर यहाँ बगीचे थे, फल फूल थे, पेड़ थे.
Very, very quiet.
बहुत शांत यहाँ रहा होगा.
No loudspeakers.
कोई लाउडस्पीकर यहाँ नहीं
no
होगा.
DJs.
कोई डीजे नहीं होगा.
No mobile phones.
मोबाइल फोन नहीं होगे.
Just the sound of chanting, the sound of people debating the Dhamma.
केवल धम्म की चर्चा यहाँ होती होगी, जो वंदनाएं लोग करते होंगे उसकी आवाजें होगी.
There were 2,000 teachers, professors, you could say.
2,000 प्रोफेसर यहाँ थे.
They were experts in their own subjects.
और अपने अपने विषयों में काफी विद्वत्ता उन्होंने हासिल की थी.
Xuan Sung, while he was here, he was only here for, we think, about 3 years.
और Xuan Sung जो थे वो यहाँ केवल 3 साल के लिए थे.
But he was so bright a student that they asked him to stay and take on a teaching post here.
तो वो इतने तेजस्वी और विद्वान ऐसे छात्र थे कि उनको यह पूरे यूनिवर्सिटी को लेने के लिए कहा गया.
Maitreevir Nagarjun told me a nice story on the way up.
और मैत्रीवीर नागार्जुन ने मुझे Xuan Sung के बारे में एक यहाँ कहानी बताई.
I have only authority I have for this story is Maitreevir Nagarjun.
अब उस कहानी की कोई भी अगर यानी संदर्भ है तो मेरे पास केवल मैत्रीवीर नागार्जुन है.
But if he told me, it must be true.
लेकिन अगर उन्होंने बताया तो शायद वह सत्य रही होगी.
But apparently, and I have read this elsewhere, actually.
और मैंने भी इसको कहीं पढ़ा है.
But apparently, local Hindu pundits were very critical of what was taught here.
लेकिन कोई हिंदू पंडित था, वो बहुत ही आलोचक थे, यानी बौद्ध धर्म के बारे में, वो यहाँ पे आए.
I think these were Brahmins from Banaras.
और मुझे लगता है वो बनारस से आए हुए कुछ ब्राह्मण थे.
Because that was the nearest equivalent.
क्योंकि करीबी जो स्थान था शिक्षा का वो बनारस था.
So one of these top Hindu pundits came to Brahmin pundits came to Nalanda.
तो वो बहुत ही विद्वान ऐसे जो टॉप के जो ब्राह्मण पंडित थे वो नालंदा में आए.
And he said, I challenge you to Dhamma combat.
तो उन्होंने कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूँ धर्म युद्ध के लिए, धर्म युद्ध की चर्चा के लिए.
My Dhamma is better than your Dhamma.
उन्होंने कहा कि मेरा जो धर्म है वह आपके धर्म से अधिक अच्छा है.
And so let somebody come and debate with me.
तो आइए आप में से अगर कोई भी तैयार है तो मेरे साथ वाद विवाद के लिए खड़ा रहिए.
The usual tradition was that if people from different traditions debated, the one who lost had to convert to the religion of the one who won.
तो तब की परंपराएं ऐसी थी कि अगर आप धर्म विवाद में या धर्म चर्चाओं में अगर प्रवेश करते हैं तो जो कुछ भी उस वाद विवाद में पराजित होगा वह उसका शिष्य बनेगा.
But this Brahmin said, no, that's not good enough.
लेकिन इस ब्राह्मण ने सोचा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है.
And he said, let the one who loses give his head to the one who wins.
तो उन्होंने कहा अगर जो कोई भी हारेगा उसको अपना सर देना होगा जो जीतेगा उसको.
And of course I mean the head without the body.
और निश्चित रूप से वो जो सर था शरीर के बिना यानी आपके सर काट को उसको देना है.
So that all the monks here were, well, they had to win.
तो अब क्या हुआ कि सभी भिक्षुओं के सामने वह एक आह्वान था और उनको जीतना था.
And I'm afraid all the monks from India, they were nervous.
तो जो भारत के जितने भी भिक्षु थे वह सभी थोड़े यानी सहमे थे.
The monks from Tibet, they were nervous.
और तिब्बत के जो भिक्षु थे वो सहमे हुए थे.
The ones from Sri Lanka, they were nervous.
और श्रीलंका के जो भिक्षु थे वो सहमे हुए थे.
But Xuan Sung said, okay, I will debate.
तो Xuan Sung ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा.
So out he went.
तो वो वहां गए.
And they set up a debating ground.
तो उन्होंने जो चर्चा का जो मैदान था उसको रखा.
Everybody would sit round in a big square.
तो बड़े चौकट में उन सब की यानी अरेंजमेंट या व्यवस्था की गई.
You know, like a cricket match.
जैसे कि क्रिकेट मैच के जैसा.
This was Nalanda's equivalent of cricket.
और वह नालंदा का यानी क्या कह सकते कि क्रिकेट ग्राउंड आप कह सकते हैं.
So everybody would sit round, maybe 20,000 people sitting around watching.
20,000 से भी ज्यादा विद्वान लोग उनको देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए.
Who is going to lose their head?
अब कौन अपना सर यहाँ खोने वाला है.
And you know, on one side they were shouting, "Brahmin wale ki vijay so."
तो एक दूसरे के लिए इस तरीके से वो चीयर्स या जय जयकार कर रहे होंगे.
On the other side, Hyun-sung vijay so.
या Hyun-sung का विजय हो.
And well, they began the debate.
और फिर वाद विवाद को शुरुआत हुई.
I don't know what they discussed.
अब मुझे पता नहीं कि क्या विषय के ऊपर उन्होंने चर्चा की.
But Hyun-sung was so brilliant that quite quickly he vanquished that pundit.
लेकिन Hyun-sung इतने विद्वान थे कि कुछ ही देर में उन्होंने उस पंडित को हरा दिया.
So the pundit bowed and said, "Here is my head."
तो वो जो पंडित थे वह Hyun-sung के आगे आए और उन्होंने कहा कि अभी मेरा सर आपके लिए हाजिर है.
You have defeated me.
आपने मुझे पराजित किया.
So Hyun-sung said, "No."
तो Hyun-sung ने कहा कि नहीं.
That's your religion.
उन्होंने कहा कि यह आपका धर्म सिखाता है सर को देना.
In our religion, we don't take life.
और हमारे धर्म में हम जीवन को नहीं लेते.
You are free.
आप मुक्त हैं.
So Hyun-sung was one of the great ornaments of Nalanda.
तो Hyun-sung जो थे यहाँ का सबसे बड़ा एक हीरा थे.
And his master was Shilabhadra.
और उनके जो गुरु थे वह Shilabhadra थे.
And he took the name of Shilabhadra on his lips back to China.
और Shilabhadra का जो नाम है उन्होंने अपनी जुबान से चाइना में वापस ले गया.
And he started similar institutions in China.
और चाइना में ऐसे ही विश्वविद्यालय की शुरुआत Hyun-sung ने की.
I'll tell you another story about another great ornament of Nalanda.
और दूसरा जो हीरा था नालंदा का मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगा.
Some of you know that in the Triratna Bodh Mahasangha we sometimes do Saptang Puja.
आपको पता होगा Triratna Bodh Mahasangha में हम सप्तांग पूजा करते हैं.
That was composed here.
और वो सप्तांग पूजा जो थी वो यहाँ रची गई.
Right here.
यहीं पे.
By the great pundit Acharya Shantideva.
सबसे महान जो विद्वान थे आचार्य Shantidev.
And he came from Gujarat.
वो गुजरात से यहाँ आए थे.
In Junagadh, that area.
जूनागढ़ का जो एरिया है वहाँ से वो आते हैं.
And he lived at Nalanda.
और वो नालंदा में रहे थे.
Apparently the story is, the Tibetans tell the story that he was very lazy.
और अक्सर तिब्बतन लोग जो बताते हैं कि Shantideva जो थे वो बहुत आलसी थे.
Well, everybody else was studying, he was sleeping.
हर आदमी जब पढ़ाई करता था तो Shantideva जाके सो जाते थे.
And so the other monks, they wanted to tease him.
तो दूसरे जो भिक्षु थे उनको चिढ़ाते थे.
You know what people are like when they come together, they start teasing each other.
अब आपको पता है कि लोग अगर इकट्ठा है तो फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं.
So they thought, well, look, he's very lazy.
तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो बहुत आलसी भिक्षु है.
Let's ask him to give the big monthly talk.
तो उन्होंने सोचा कि आइए इसको बताते हैं, जैसे मेमोरियल लेक्चर कहते हैं ना, ऐसा एक
मेमोरियल लेक्चर.
तो ऐसा एक बड़ा महीने का जो प्रवचन है उससे हम दिलवाएं.
Every month, one of the top teachers would give a talk which everybody would attend. 10,000 monks would come.
तो महीने का एक प्रवचन मुख्य प्रवचन होता था जिसमें सभी 10,000 से ज्यादा भिक्षु इकट्ठा आकर उसे सुनते थे.
So one morning they woke him up and said, "Ho, Shantideva, you're on."
तो एक भिक्षु आए उनको जगा कि Shantideva उठो, अभी आपकी बारी आ गई.
You got to sit on the Dhamma gadi and teach.
तो आपको जो धम्म जो व्यासपीठ है उस व्यासपीठ के ऊपर खड़ा होना है और आपको अभी बोलना है.
So Shantideva said, "Okay, ठीक है."
तो Shantideva ने बोला चलो ठीक है.
And so he got onto the platform.
तो उस व्यासपीठ पे या मंच पे वो खड़े हुए.
And you can imagine that the monks were putting their robes over their head and giggling.
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो दूसरे भिक्षु थे जो वो चिढ़ा रहे थे वो अपना मुंह झाक के अंदर हंस रहे थे.
What a fool he's going to make of himself.
इस तरीके से उन्होंने अपना मुंह झाक के उसकी निंदा की होगी.
But Shantideva started to speak.
लेकिन Shantideva ने फिर बोलना शुरू किया.
He spoke in perfect Sanskrit.
उन्होंने बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में अपना प्रवचन शुरू किया.
In perfect Sanskrit verse.
और बिल्कुल जो प्रमुख जो उसकी गाथा है उन गाथाओं में वो ये बोले.
A very very beautiful, wonderfully imaginative verse.
और बहुत ही सुंदर काल्पनिक या काव्यात्मक अलंकारिक शब्दों में उन्होंने यह कहा.
Very deep teaching.
बहुत ही गहरी शिक्षाओं को उन्होंने उजागर किया.
Which is about the Bodhisattva path.
और उसको हम बोधिसत्व मार्ग कह सकते हैं.
About the paramitas which Baba Sahib speaks of in the Buddha and his Dhamma.
बौद्ध और उनके धम्म में जो बाबा साहब पारमिताओं की बात करते हैं उस स्तर की उन्होंने शिक्षाएं दी.
And apparently people were just amazed.
और सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हुए.
He's sleeping all day and yet he can speak like that.
तो वो सारा दिन सोते थे और ऐसे कैसे वो बोल सकते हैं?
Now don't take this example.
अब इस उदाहरण को आप मत लीजिए.
If you sleep all day, you will not pass your exams.
अगर आप सोएंगे पूरा दिन तो आप परीक्षा में पास नहीं होंगे.
Because Shanti Deva had a secret.
क्योंकि शांति देव के पास एक रहस्य था.
Because when everybody else was sleeping, he was studying.
क्योंकि हर व्यक्ति जब सोता था तब शांति देव पढ़ते थे.
Because that's when it was quiet.
क्योंकि तभी शांति रहती थी.
You could get in the library and get a book.
क्योंकि तब आप लाइब्रेरी में जा सकते थे और किताबें पढ़ सकते थे.
Nobody using the computers.
क्योंकि तब को कंप्यूटर नहीं थे.
So he's studying at night.
और वो रात में पढ़ते थे.
And he became the chief ornament of Nalanda.
और इस नालंदा के सबसे एक प्रमुख हीरे में से एक हीरा है.
So when we say that sevenfold puja, remember Shanti Deva here.
तो जब आप वह सप्तांग पूजा कहते हैं तो शांति देव की आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं.
It's taken from that Bodhicharya avatara that he taught here.
तो उस बोधिचर्या अवतार से वह ली गई है जो उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई.
मंदारो उत्पल और मलिकादि सब सुगंधित पुष्पों, you know. Yes, these are two of the great ornaments of Nalanda.
तो यह इस नालंदा के दो हीरे थे.
There's another very important figure.
यहाँ और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है.
You know that Buddhism went to Tibet.
आपको पता है बौद्ध धर्म तिब्बत में गया.
When Buddhism came to Tibet, it faced many, many difficulties.
और जब बौद्ध धर्म तिब्बत में गया तो काफी कठिनाइयों से यह गया.
But first of all, the kings supported it.
सबसे पहले जो राजा जो थे उन्होंने इसका समर्थन किया.
But then a later king suppressed Buddhism.
लेकिन बाद में जो राजा है जो आए उन्होंने उसका उत्पीड़न किया या उसे दबाया.
The monasteries were burnt, the monasteries were destroyed.
वहाँ की जो संगाराम थे या जो बौद्ध मंदिर थे उनका पतन हुआ.
So they'd lost the Dhamma.
तो फिर धम्म वहाँ से नष्ट हुआ.
But a time came when a king wanted to revive Buddhism.
लेकिन ऐसा वक्त आया वहाँ पे एक राजा है कि वो बौद्ध धर्म को फिर से लाना चाहते थे.
So he sent one of the monks that still survived.
तो एक जो भिक्षु थे जो तब जीवित थे उनको उन्होंने बुलाया या भेजा.
He said, "Bring back to us a great pundit."
और उन्होंने कहा कि जो सबसे महान बौद्ध विद्वान हो उसको वापस यहाँ लाइए.
So a delegation came from the Tibetan king.
तो तिब्बतन जो राजा था उससे एक पथक यहाँ भारत में आया.
They looked all over North India.
सभी उत्तर भारत में उन्होंने छानबीन की देखा.
They went to many monasteries.
और बहुत सारे मंदिरों में या संगारामों में वो गए.
And they came eventually to Nalanda.
और फिर वो नालंदा में आए.
And they discovered that the greatest teacher here was a quite old man.
तो यहाँ के सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षक उस वक्त जो थे वो काफी वृद्ध व्यक्ति थे.
And his name was Atisha Dhammapala.
और उनका नाम था अतिशा धम्मपाल.
He's very famous in Tibet now as Atisha.
अतिशा अतिश जो है वह काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है तिब्बत में.
And he's considered the second founder of Buddhism in India.
और बौद्ध धर्म में जो दूसरे बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक उन्हें माना जाता है.
But he'd been told, some people had said to him that if he left Nalanda, his life would be shortened.
और तब लोगों ने उन्हें बताया कि अगर आप अभी नालंदा को छोड़ेंगे उस उम्र में तो आपका जीवन कम हो जाएगा.
They told him that if he stayed here, he'd live a long life.
अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपका जीवन अधिक ज्यादा बढ़ेगा.
But if he went, and especially if he went over the Himalayas to Tibet, his life would only be 2 or 3 years long.
अगर आप अगर हिमालय में जाएंगे जाओगे तो फिर 2-3 साल ही आप जिएंगे.
But Atisha, he said, I will go.
लेकिन Atisha ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा.
The people of Tibet need the Dhamma. I will go.
तिब्बत के लोगों को धम्म चाहिए. मैं वहां जाऊंगा.
So he went to Tibet.
तो वो तिब्बत में गए.
He spent not very long there.
बहुत दिनों तक वे वहां जीवित नहीं रहे.
It's not clear how long, but maybe only 18 months, 2 years.
अब हमें पता नहीं कि कितने साल वो वहां जिए, लेकिन 2 साल ही वो वहां जिए ऐसा कहते हैं.
But in that time, he was able to completely revitalize Buddhism in India,
लेकिन
in Tibet.
उतने कम समय में पूरे बौद्ध धर्म को उन्होंने पुनर्स्थापित किया.
So you can see this spirit of Nalanda, this missionary spirit of Nalanda.
तो आप समझ सकते हैं कि जो मिशनरी चेतना नालंदा की जो थी वह कैसी थी.
This was a place where the best Buddhist culture spread throughout Asia.
यहाँ से सबसे सर्वोत्तम या सर्वोच्च बौद्ध संस्कृति जो थी वह एशिया में प्रसारित की गई.
And there was a very strong spirit of taking the Dhamma out.
और यह बहुत ही जबरदस्त या मजबूत ऐसी चेतना थी धम्म को बाहर ले जाने की.
They weren't just trained here to have a nice life.
यहाँ केवल उन्होंने उनको अच्छा यानी आरामदायक जीवन के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया.
Just to have some vihara somewhere and just do a few puja and get some dakshin.
तो यहाँ पे बढ़िया बहुत अच्छा विहार हो और कहीं से दक्षिणा लो और आराम से रहो ऐसा नहीं था.
They were taught to go out and teach the Dhamma.
उन्हें हमेशा ही यह पढ़ाया गया कि आप आगे जाइए बाहर जाइए और धम्म को पढ़ाइए.
So this was a real center for the spread of Buddhism throughout Asia.
तो पूरे एशिया में धम्म प्रसार और प्रचार के लिए यह सबसे प्रमुख स्थान था.
So over the 700 or 800 years that it survived, it had a huge influence on the whole of Asia.
तो समूचे एशिया के ऊपर इसका बहुत ही गहरा और विशाल प्रभाव था.
And a big influence on India even today.
और आज भी भारत के ऊपर इस विश्वविद्यालय का प्रभाव है.
Even you can say on the whole world because this idea of a university began here.
समूचे विश्व में इस विश्वविद्यालय का प्रभाव है क्योंकि विश्वविद्यालय की संकल्पना यहाँ से ली गई.
And yes, it was an international center.
और यह एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था.
It was a center where people left behind their separate identities.
उनकी जो अपनी पहचान जो थी उसको उन्होंने पीछे छोड़ा था जो भी लोग यहाँ आए.
So the best traditions of Buddhism were from here.
तो बौद्धों के सबसे सुंदर या महत्वपूर्ण जो संप्रदाय थे वो यहाँ से निकले.
Just a few more things I'll tell you.
और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा.
We know that the Buddha himself came here.
हम जानते हैं कि बुद्ध स्वयं यहाँ आए.
And the tradition is that Shariputra, the Senapati of the Sangha, died here.
और हम जानते हैं कि जो धम्म के जो सेनापति थे Shariputra वो यहाँ आए थे.
Which is his stupa? This is his stupa, yeah.
और जो Shariputra का जो स्तूप है वो Shariputra का स्तूप है.
So for Buddhism, this has always been an important place.
तो बौद्ध धम्म के लिए ये हमेशा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है.
The Buddha's feet would have trodden on this soil.
तो इस जमीन पे बुद्ध के चरण पड़े हैं.
As all over Bihar, but particularly here.
संपूर्ण बिहार में वो गए लेकिन निश्चित रूप से वो यहाँ आए.
Some people say that this was a sort of headquarters for the Buddha.
और ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के लिए एक मुख्यालय था.
I don't know whether there's any truth in that.
अब उसमें कितनी सत्यता है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं.
Rajgir was of course one of his major centers.
निश्चित रूप से राजगीर बुद्ध का एक प्रमुख मुख्यालय था.
So this was always a very important place for Buddhism.
तो बौद्ध धम्म के लिए यह हमेशा ही एक प्रमुख स्थान रहा.
It was patronized by the Gupta kings.
गुप्त किंग ने उन्हें सुरक्षा दी थी संरक्षण किया था.
The emperor Harshvardhan did a lot of donation here.
जो राजा हर्षवर्धन ने काफी सारा दान यहाँ दिया.
He founded an empire based on Kannauj.
कन्नौज में उनकी राजधानी थी.
But he very highly valued Nalanda.
लेकिन नालंदा का बहुत सम्मान और आदर उन्होंने किया.
And he donated a lot of land, a lot of property for the support of Nalanda.
बहुत सारा दान और जमीन उन्होंने यहाँ दान की इस नालंदा को मदद करने के लिए.
So this was state funded.
तो यह राज्य से इसका कोषागार था या मदद होती थी.
And then the Pala kings, who the last Buddhist dynasty, they they supported Nalanda.
तो पाल जो राज्य थे राजा थे वह सबसे आखिरी राजा थे जिन्होंने नालंदा को समर्थन किया या मदद की.
And when the Pala kings collapsed, that was the end of Nalanda.
तो जब पाल शासन का जब पतन हुआ तो तब नालंदा का भी पतन हुआ.
There were two forces that finished Nalanda.
दो प्रमुख शक्तियां थी जिन्होंने नालंदा का पतन किया.
The main story is the invasions of Bakhtiar Khilji.
प्रमुख कारण यह बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था.
They're just looking for loot, really.
वो केवल लूटने के लिए ही आए थे.
They came here looking for gold.
यहाँ पे केवल सोना अगर मिलेगा क्या उसके लिए वो यहाँ आए थे.
But all they found was the gold of knowledge.
लेकिन यहाँ जो सोना था वह ज्ञान का सोना था.
So they burnt that.
तो उसको उन्होंने जलाया.
Because there's nothing in there that's useful.
क्योंकि उनके लिए कोई वह काम की चीज नहीं थी.
The monks were chased away.
और जो यहाँ भिक्षु थे वो फिर यहाँ से भागे.
Apparently there were still monks teaching here in a small number of monks teaching here in about 1230.
तो 1200 या 13वीं शताब्दी तक कुछ जो छोटे समूह भिक्षु के थे वो यहाँ पढ़ाते थे.
One very old monk was here with a group of disciples.
यहाँ पे एक बहुत ही वृद्ध भिक्षु थे उनके अपने शिष्यों के साथ.
Then some soldiers came, so they left.
तो कुछ सैनिक यहाँ आए और फिर उन्होंने यह स्थान को छोड़ दिया.
And it all went underground.
और वह सभी फिर जमीन के नीचे धस गया.
The whole of that learning was forgotten.
और वो जो सारी शिक्षाएं थी वह सारी शिक्षाएं लोग भूल गए.
Literally this was buried.
और यह यानी शाब्दिक रूप से यह पूरा दफन हो गया था.
And it was first excavated in the early 20th century,
1819, 1819. 1819
And more extensive excavations in 1974.
और 1974 में ज्यादा उत्खनन यहाँ पे हुए.
So like the rest of Buddhist India, it went underground.
तो जैसे कि सभी भारत के यानी बौद्ध के जो अवशेषों का पतन हुआ वैसे ही इसका भी हुआ था.
But it's coming out.
लेकिन अभी यह बाहर आ रहा है.
We are here.
क्योंकि अब आप लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं.
We, well, you young Buddhists. No, we young Buddhists.
तो हम जो युवा बौद्ध हैं.
We are bringing Buddhism back to life.
तो बौद्ध धर्म को फिर से जीवन में लाने का काम हम कर
रहे हैं. We will create a new Nalanda.
हम अब एक नई नालंदा को बनाएंगे.
But there's a very strong connection for us in Triratna. There's a very strong connection with Nalanda for us in Triratna.
तो त्रिरत्न के लिए नालंदा के साथ एक बहुत मजबूत ऐसा एक संबंध है.
You know that Bhante Sangharakshita came to India in 1944.
आप सब लोग जानते होंगे कि 1944 में उर्गेन संगरक्षित यहाँ आए थे.
And in 1947, he went to study with Bhikshu Jagdish Kashyap.
और 1947 में भिक्षु जगदीश कश्यप जी के साथ पढ़ाई करने के लिए वो गए.
He was very unusual. He was an Indian bhikshu.
वो बहुत ही असाधारण बौद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षु थे.
He was associated with Anand Kausalyan and so on, Dhammanand.
धर्मानंद कौसंबी और आनंद कौशल्यान इनके साथ उनके संबंध थे.
They were the three Indian bhikshus.
ये तीन बहुत ही प्रमुख भारतीय भिक्षु है.
And he was Sangharakshita, our teacher's first teacher.
और संगरक्षित जी के वो पहले शिक्षक है.
And he studied Pali, Buddhist logic, and interestingly also looked at the dohas of Kabir with him.
तो भिक्षु जगदीश कश्यप जी के साथ जो बुद्धिस्ट लॉजिक्स है उसके बारे में और कबीर के दोहे के बारे में उन्होंने पढ़ाई की.
And Pali, yeah. And Abhidhamma.
और अभिधम्म और पाली की उन्होंने शिक्षा ली.
But Bhikshu Kashyap ji had a great vision.
लेकिन भिक्षु कश्यप जी के पास एक महान दृष्टि थी.
He wanted to revive Nalanda.
वो नालंदा को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते थे.
And he came here with Bhante Sangharakshita in
1949 में. नालंदा में भंते संगरक्षित जी के साथ भिक्षु जगदीश कश्यप जी यहाँ आए थे.
1950 में. And he formed the intention then to set up Nava Nalanda.
और वहां से फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे एक नव नालंदा की स्थापिति या स्थापत्य होना चाहिए.
And that has come to life near here, the Nava Nalanda Mahavidyalaya.
तो यहाँ पे एक नव नालंदा जो महाविद्यालय है उसकी स्थापना कश्यप जी ने की.
And it's a major center for the study of Pali and Abhidhamma.
और अभिधम्म और पाली की प्रमुख शिक्षा है वहाँ पे अभी भी दी जाती है.
A very, very important contribution to the development of Buddhism in India.
भारत के बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए उसका एक बहुत बड़ा योगदान है.
So it's a very important place for us too.
तो हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है.
Buddhism is coming back to life here.
ये बौद्ध धर्म यहाँ फिर से वापस जीवन ले रहा है.
And there's a big plan with a lot of money from Buddhist countries to set up a new Nalanda.
बौद्ध जगत से या बौद्ध देशों से यहाँ बहुत पैसा आ रहा है एक नए नालंदा की स्थापना के लिए.
But yes, the main thing is for us. Never mind them.
उनकी चिंता मत कीजिए.
The main thing for us is to take the lessons of Nalanda.
तो महत्वपूर्ण यह है कि नालंदा से जो हमें शिक्षाएं मिली है उन शिक्षाओं को हमने लेना चाहिए.
If we really want Buddhism to live, we need to educate ourselves.
और अगर हमें बौद्ध धर्मों को जिंदा रखना है तो हमें शिक्षित होना है.
We need to educate ourselves in Buddha Dhamma, of course.
निश्चित रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आपने लेना चाहिए.
But we need to study everything.
लेकिन हर चीज की भी पढ़ाई आपने करनी चाहिए.
Even other religions.
और धर्मों की भी आपने पढ़ाई करनी
चाहिए. Then we can understand where people are coming from.
तब आप समझेंगे कि लोग कहाँ से आते हैं.
So that's the first lesson we get from Nalanda.
तो यह पहली शिक्षा हमें नालंदा से मिलती है.
Secondly, we must have an international attitude.
और हमारा जो दृष्टिकोण है वह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि होनी चाहिए.
Beyond all divisions between human beings.
कोई भी विभाजन इंसानों में या मानवता में हमने करना नहीं चाहिए.
Beyond caste, beyond gender, beyond nation, beyond race, whatever.
राष्ट्र का या वंशवाद या जातिवाद या रंग भेद या लिंग भेद हमने किसी भी तरीके का भेद नहीं करना चाहिए.
We must see each other as brothers and sisters in the Dhamma.
धम्म में एक दूसरे के हम भाई बहन हैं ऐसा ही हमने सोचना चाहिए.
Then intellectual inquiry.
और दूसरी बात है बौद्धिक खोज.
We mustn't be afraid to think.
सोचने से डरिए नहीं.
We mustn't be afraid to question.
और सवाल करने से आप डरिए नहीं.
We mustn't be afraid to discuss.
और चर्चा या विवाद से आप घबराइए नहीं.
I think your Indian education system doesn't encourage this.
और जो बौद्ध शिक्षण प्रणाली है इसके लिए प्रोत्साहन नहीं देती है.
But be students of Nalanda.
Sorry, भारतीय शिक्षण प्रणाली है जो इसको प्रोत्साहन नहीं देती है.
Of course, at Hyderabad they do encourage thinking.
हैदराबाद में इसको प्रोत्साहन मिलता है.
But you must be students of old Nalanda.
लेकिन आप जो प्राचीन नालंदा है उसके छात्र होने चाहिए.
Disagree with your professors.
आपके प्रोफेसरों के साथ आप असहमति जताइए.
Ask them deep questions.
उनको गहरे सवाल आप पूछिए.
Make them sweat.
उनका पसीना निकालिए.
If you defeat them, don't take their heads.
लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उनके सर आप मत लीजिए.
But yes, don't be afraid to question.
लेकिन सवाल पूछने से आप डरिए नहीं.
And let's discuss with each other.
और एक दूसरे के साथ चर्चाएं कीजिए.
I know Amar asked Sihe Manas a very difficult question the other day.
एक दिन अमर ने सीए मानस को बहुत कठिन सवाल किया.
Do you believe in God?
क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं?
Sihe Manas is still thinking.
अब सीए मानस अभी भी सोच रहे हैं.
So we mustn't be afraid to challenge, to discuss, to think.
तो इस तरीके से हमने विवाद या प्रश्न पूछने से चर्चा करने से डरना नहीं चाहिए.
But there's one final lesson.
लेकिन एक और अंतिम शिक्षा है.
Don't keep the Buddha Dhamma for yourself.
बौद्ध धर्म को केवल अपने तक ही मत रखिए.
I'm talking especially to Maharashtrians.
मैं विशेषकर महाराष्ट्रियन लोगों के साथ यह बताना चाहता हूँ.
Especially from Nagpur. Or from Gondia.
जो मुख्यतः नागपुर से आते हैं उनसे.
I know you were born in the place of the Dikshabhumi.
मुझे पता है कि आप दीक्षा भूमि जैसी जगह से पैदा हुए
हैं. Even Pune.
और पुणे से भी जो लोग हैं.
Don't stay in Maharashtra.
अब महाराष्ट्र में आप रुकिए नहीं.
The world needs the Dhamma.
पूरे दुनिया को धम्म की आवश्यकता है.
Bihar needs the Dhamma.
बिहार को धम्म की आवश्यकता है.
Vihar, Bihar needs to become Vihar again.
बिहार को विहार बनाने की आवश्यकता है.
And that will come from you.
और आप लोगों से यह आएगा.
So have that spirit of Nalanda.
तो नालंदा की वह चेतना आप अपने साथ लीजिए.
Taking the Dhamma out throughout the world.
दुनिया में धम्म का प्रसार प्रचार कीजिए.
We need the Dhamma in the West.
पश्चिमी देशों में धम्म की आवश्यकता है.
Anybody who wants to spread the Dhamma in Hungary amongst the gypsy people, I can find you a place immediately.
अगर किसी को हंगेरी में या जिप्सी लोगों में जाके धम्म प्रसार प्रचार करना है तो मैं आपको जगह
दूंगा. Constantly asking for an Indian teacher.
हमेशा ही वो भारतीय शिक्षक के बारे में पूछते
हैं. But I came to Nalanda, I couldn't find anybody.
अब नालंदा में मैं शिक्षक को ढूंढने आया हूँ, वहां मुझे कोई मिला नहीं है.
Oh, there we are. Chetan had his hand up there. I saw. Yeah. Do you see? Chetan's hand was up. Too late now. You're committed.
At Nalanda.
Right at Nalanda. So we need. The whole world needs the Dhamma.
तो पूरे दुनिया को धम्म की जरूरत है.
We need ladies too.
और हमें महिलाओं की आवश्यकता है.
There's a very, very good ladies sangha in Hungary, but gypsy people.
जिप्सी लोगों में बहुत अच्छा महिलाओं का संघ है.
They want a teacher.
उनको भी शिक्षिका चाहिए.
They don't want a man.
अब उन्हें पुरुष नहीं चाहिए.
They want a woman as an example.
और एक महिला का उन्हें उदाहरण चाहिए.
And they're very strong ladies.
और वो बहुत मजबूत महिलाएं हैं.
Because in the gypsy families, the men they just drink. Yeah?
They drink.
Yeah.
तो जो जिप्सी महिलाएं होती है वो बहुत पीती है.
नहीं, महिला नहीं.
I'm sorry.
अरे बाप रे.
I'm sorry. What did you say?
The gypsy men they drink.
Oh sorry. I'm sorry. जो जिप्सी पुरुष है वो बहुत पीते हैं.
You see the problem.
जिप्सी पुरुष जो है वो बहुत पीते हैं.
So they want an example of a strong woman.
तो उन्हें एक मजबूत महिला का उदाहरण चाहिए.
So any volunteers? Chetan can help the women, the men, but.
अब चेतन पुरुषों को मदद करेंगे.
Oh look.
तो प्रियंका यहाँ पे मजबूत महिला.
बहुत 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 मजबूत. सो यस, वी नीड टू हैव द स्पिरिट ऑफ गोइंग आउट.
तो इस तरीके का जो बाहर जाने की जो प्रेरणा है, जो चेतना है, उसकी आवश्यकता है.
दैट्स द मैसेज ऑफ नालंदा.
यह नालंदा का संदेश है.
सो लेट्स ब्रिंग नालंदा बैक टू लाइफ.
तो नालंदा को फिर से जीवन में आप लाइए.
लेट्स नॉट जस्ट लीव इट एज दीज ब्रिक्स.
तो केवल इन ईंटें भरी दीवारों को नहीं छोड़ना है.
लेट्स रीबिल्ड नालंदा.
फिर से नालंदा को बनाना है.
इन आवर ओन लाइव्स, इन आवर ओन स्पिरिट.
अपने चेतना में, अपने जीवन में.
सो let's now enjoy the sights and imagination of Nalanda.
To aap ab Nalanda ki kalpana kijiye aur is parisar ka anand lijiye.
Try to connect with those crores of bhikshus and others who must have passed through here.
To yahan se jo karodon bhikshu gaye honge unke sath apna sambandh prasthapit kijiye.
Your ancestors.
वह आपके पूर्वज है.
Well, mine were just crawling around.
अब मेरे पूर्वज तो ऐसे ही घूम रहे थे.
And try to soak up that spirit.
और उस चेतना को अपने अंदर यानी पी जाइए.
Let that sort of bring you to life again.
अब उसको आपके जीवन में फिर से आने दीजिए.
नमो बुद्धाय, जय भीम.
नमो बुद्धाय, जय भीम.